ऑडियो बुक प्रस्तुत है स्पर्श भाग एक, कक्षा नौ के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक। आइए सुनते हैं पाठ धूल। लेखक हैं राम विलास शर्मा। पृष्ठ संख्या 6 से 12 तक। राम विलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। यहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में पहले पहले कविताएं लिखकर और फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। राम विलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, महाप्राण निराला के काव्य को एक नए निकष पर परखा। राम विलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना। इसके 3 खंड हैं, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे, पाप के पुजारी, 4 दिन और अपनी धरती अपने लोग। राम विलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांव और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। आइए सुनते हैं पाठ धूल। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अभिजात्य वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं होगी। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, जिन्होंने लिखा था धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ उठाना रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का भी परिचय दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी के अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है? रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बतर पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपनाम बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही तो उपज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह एरावत हाथ के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है, चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों में बांटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहां। यह कविता की विडंबना थी। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गो गोपालों के पदों की धूली है। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहां तक कि घृणा, असूया के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने जैसी क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य और धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे, और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। प्रश्न अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। एक, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? दो, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? तीन, मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है? लिखित क, इन प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। एक, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? दो, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? तीन, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? चार, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? पांच, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? ख, इन प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। एक, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? दो, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? तीन, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? चार, हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पांच, धूल धूली धूली धूरी और गोधूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए। छह, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सात, कविता की विडंबना को मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? ग, इनके आशय स्पष्ट कीजिए। एक, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। दो, धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लरिकान की, लेखक इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहता है? तीन, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। चार, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए, कम से कम उस पर पैर तो रखे। पांच, वे उलटकर चोट भी करेंगे, तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। भाषा अध्ययन। एक, इन शब्दों के उपसर्ग छांटिए। उदाहरण, विज्ञापित, वी ये उपसर्ग है, ज्ञापित। संसर्ग, उपमान, संस्कृति, दुर्लभ, निर्द्वंद, प्रवास, दुर्भाग्य, अभिजात, संचालन। दो, लेखक ने इस पाठ में धूल चूमना, धूल माथे पर लगाना, धूल होना जैसे प्रयोग किए हैं। धूल से संबंधित अन्य पांच प्रयोग और बताइए तथा इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। योग्यता विस्तार। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता मिट्टी की महिमा, नरेश मेहता की कविता मृत्तिका तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की धूल शीर्षक से लिखी कविताओं को पुस्तकालय में ढूंढकर पढ़िए। परियोजना कार्य। इस पाठ में लेखक ने शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता का जिक्र किया है। इस असारता का वर्णन अनेक भक्त कवियों ने अपने काव्य में किया है। ऐसी कुछ रचनाओं का संकलन कर कक्षा में भित्ति पत्रिका पर लगाइए। शब्दार्थ एवं टिप्पणियां। खरादा हुआ यानी सुडौल और चिकना बनाया हुआ, रेणु अर्थात धूल, श्रृंगार यानी सजावट, पार्थिवता यानी मिट्टी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, अभिजात यानी कुलीन, प्रसाधन सामग्री अर्थात श्रृंगार की सामग्री, गोधूली अर्थात सायंकाल जंगल से लौटते समय गायों के खुर से उड़ती हुई धूली, संसर्ग अर्थात संपर्क, कनिया अर्थात गोद, विज्ञापित अर्थात सूचित, लरिकान अर्थात बच्चे, नौबत यानी हालत, सिझाई यानी पकाई हुई, निर्द्वंद अर्थात जहां कोई द्वंद्व ना हो, जिसका कोई विरोधी ना हो, असारता अर्थात सार रहित, जिसका कोई सार ना हो, सूक्ष्म बोध, बातों की गहराई को समझने की क्षमता। अमराइयों अर्थात आम के बाग, नक्षत्र पथ अर्थात नक्षत्रों का मार्ग, विडंबना अर्थात छलना या विसंगति, बाटे अर्थात हिस्से, नीच को धूरी समान अर्थात धूल के समान तुच्छ कौन है। यूलिसिस, होमर के महाकाव्य ओडेसी का एक प्रमुख पात्र जो कठिनाइयों से संघर्ष करने वाले व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। प्रवास अर्थात परदेशवास, इथाका यानी यूनान का एक स्थान, यूक्रेन अर्थात एक देश, व्यंजना अर्थात शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, असूया यानी ईर्ष्या। छायावादी दर्शन प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में व्यंजित करना, संदिग्ध अर्थात जिसमें संदेह हो, कांति अर्थात चमक।